તારીખ 8/11/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 147 અને 419 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 120
પત્રાંક 147 ખીમજીભાઈ ઉપર લખાયેલો પત્ર છે. સુગ્નભાઈ ખીમજી आज्ञा के प्रति अनुग्रह दर्शाने वाले वाला संतोषप्रद पत्र मिला. खिमजी भाई का एक पत्र था, उसमें आज्ञा के प्रति अनुग्रह की मांग किया है. इस तरह से कि आप कृपा करके हमें कोई आज्ञा कीजिए, ऐसा कोई पत्र का विषय ऐसा है खिमजी भाई का. तो उसमें वो लिखा है कि आप हमको आज्ञा देने की कोई कृपा कीजिए, अनुग्रह हमारे पर कीजिए, आज्ञा करने का अनुग्रह कीजिए, ऐसा दर्शाने वाला पत्र कृपालु देव को मिला है और उस पत्र ने संतोष दिया है. संतोष प्रद मैंने संतोष देने वाला ऐसा पत्र मिला है. तो उसी विषय पर उन्होंने दो वाक्य लिखे हैं. जब उन्होंने आज्ञा मांगी है तो आज्ञा देने के लिए कृपा करने का रिक्वेस्ट किया है, विनंती किया है, तो उसी विषय पर लिखते हैं कि आज्ञा में ही एकता हुए बिना परमार्थ के मार्ग की प्राप्ति बहुत ही असुलभ है. क्या कहते हैं कि ज्ञानी की आज्ञा में रहना उतनी सी बात नहीं है, आज्ञा में एकता हो जाना है. तो में फर्क है, मुमुक्षु को ऐसा तो सहज, ऐसी समझ तो सहज होती ही है कि ज्ञानी की आज्ञा में मुझे रहना है, रहना चाहिए. अगर उतनी भी समझ नहीं है तो फिर मुमुक्षुता भी नहीं है. तो उतनी तो समझ सहज होती है कि हमें ज्ञानी की आज्ञा में रहना चाहिए, लेकिन ऐसे समझ होने के बावजूद भी वो आज्ञा का उल्लंघन कई बार कर लेता है, यानी कई बार उनसे हो जाता है. कर लेता है मतलब कोई करने का इरादा से करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो जाता है, अपनी प्रकृति वशात हो जाता है या संजोग वशात अपनी कमजोरी के कारण से हो जाता है, कभी न कभी हो जाता है. इसका कारण क्या है? इसका यहां स्पष्टीकरण दिया है कि इसका कारण यह है कि आज्ञा में एकता नहीं हुआ. आज्ञा में एकता हो जाए तो वो बात बनने वाली नहीं है, उतनी जागृति रहती है एकता होने वाले.
उसके पीछे
आत्मकल्याण की मुख्यता जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। परमार्थ का मार्ग, मैंने आत्मकल्याण का मार्ग, उसकी प्राप्ति बहुत ही असुलभ है। यानी परिणाम में चढ़ाव उतार क्यों आता है? जो मुमुक्षु आत्मकल्याण के मार्ग में प्रयास कर रहा है, कुछ न कुछ अंश में प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उनको भी ये अनुभव होता है, पर उनकी ये शिकायत रहती है कि कभी परिणाम ठीक चलते हैं, कभी ठीक नहीं चलते हैं, क्या करें। इसके लिए इसका इलाज है, इसका उपाय है, वो बहुभाग मुमुक्षु पूछते हैं। पर बहुभाग मुमुक्षु की यह हालत है कि परिणाम कभी ठीक रहता है, कभी परिणाम ठीक नहीं रहता है। यही कारण है इसके पीछे कि वो आज्ञा में एकता नहीं हुआ है। लिखा है कि एकता होना भी बहुत असुलभ है। एकता होना उतना सुलभ नहीं है। हाँ, सर्वार्पण बुद्धि में कमी हो या अभाव हो तो एकता तो नहीं हो पाएगा। सर्वार्पण बुद्धि से आश्रय भक्ति में रहने वाला एकता हो जाएगा। टोटली सरेंडर हो जाए तब बात है। थोड़ा भी अपना अभिप्राय रखता है, ऐसा नहीं और ऐसा, तो एकता नहीं हो पाएगा। अब विचार वो करना है कि एकता क्यों नहीं होता है। एकता होना भी असुलभ है, यानी दुर्लभ है। वो तो क्यों लिखते हैं कि ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। जो मुमुक्षु स्वयं के समागम में आए थे उनको देखते हुए लिखते हैं कि एकता होना भी सुलभ नहीं है। मुमुक्षु ज्ञानी के प्रति भक्ति बहुमान तो रखता ही है, नहीं रखे तो मुमुक्षुता भी कहां से होगी। वो तो मुमुक्षुता का व्यवहार से भी गया बीता है। लेकिन एकता होना एक दूसरी बात होती है, और जो एकता हो गया उसको कोई प्रतिबंध नहीं नड़ेगा, कोई प्रतिबंध आड़ा नहीं आएगा। क्यों? कि इसकी मुख्यता उतनी हो गई कि जगत का कोई पदार्थ ज्ञानी की आज्ञा से विशेष उनको भाषित नहीं होता, लगता नहीं। यही कारण है। जब जगत का कोई पदार्थ इससे विशेष नहीं है तो फिर कौन सा प्रतिबंध रहेगा? जो प्राण त्याग करने के लिए भी तैयार है, जब से ज्यादा क्या होता है, सबसे अधिक प्रिय तो प्राण होता है। प्राण त्याग करना पड़े या प्राण देना पड़े, समझो छोटी मोटी चीज देने में हिचकिचाहट हो उसकी तो बात अलग है, लेकिन प्राण देने की बारी आ जाए तो तैयार हो जाए। प्रश्न वो है इनका कि प्राण देना तो संभव है, प्रकृति को देना संभव नहीं है। मैंने जीव को अपनी प्रकृति प्राण से भी अधिक प्यारी है। वास्तव में ऐसा ही है। जीव सुसाइड कोई करता है, कोई मनुष्य क्यों करता है? प्रकृति का वश करता है। मान की प्रकृति होगी, अपमान हो जाएगा, बोले क्या इस संसार में मुझे नहीं रहना है, मैं जल जाऊंगा, मैं छत से कूद जाऊंगा, मैं जहर ले लूंगा। क्यों? प्रकृति नहीं छोड़नी है, प्राण छोड़ना है, प्रकृति नहीं छोड़नी है। वास्तव में ऐसा है, प्राण भी देना आसान है, प्रकृति का समर्पण करना आसान नहीं है। वास्तव में प्राण आत्मा नहीं है, प्रकृति आत्मा है। संसार अवस्था में प्रकृति आत्मा है, प्रकृति का छोड़ना बहुत मुश्किल है। प्रकृति को छोड़ने जाए तो पसीना उतर जाए, अच्छी बात है। जैसे प्रकृति का अभाव क्रोध मान माया लोभ, चार प्रकृतियां मुख्य हैं, उनकी चार जाति है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्णी, प्रत्याख्यानवर्णी और संजलन। तो दसवें गुण स्थान के अंत में जाती है संजलन। मैंने क्रोध मान माया की प्रकृति का अभाव कब होता है कि दसवें गुण स्थान के अंत में, तो इसके पहले ज्ञान दशा प्राप्त होने में अनंतानुबंधी की जात है, उसका अभाव होता है, लेकिन प्रकृति छूटती नहीं है। तो मुमुक्षु दशा में तो अनंतानुबंधी भी गई नहीं, मुमुक्षु दशा में अनंतानुबंधी पतली हो जाती है, फिक्की हो जाती है, मौली पड़ी जाए, निरस हो जाती है, हीन सत्व ताकत बिना की हो जाती है, ये सब होता है। पर इतना होता है तो भी वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ सकता है। जो आज्ञा में एक तान हुआ उसने प्रकृति का समर्पण कर दिया, ये बात है।
जैसे अगर किसी को वर्तमान में है, आज्ञा में एक तान नहीं हुआ है, तो क्या फैक्टर्स उसमें हो जाएगा? अभी वर्तमान में नहीं है, उसको क्या कर्तव्य है?
एक तान होना कर्तव्य है
प्रकृति कुछ,
हाँ, प्रकृति के सामने पूरी लड़ाई करे, पूरी ताकत से लड़े। हमको जहर नहीं खाना है तो नहीं खाना है, किसी हालत में भी नहीं, किसी बहाने भी नहीं खाना है, किसी प्रसंग में भी नहीं खाना है, किसी कारण से भी नहीं खाना है, बस बात खत्म। जीव को अपनी ताकत वहां लगानी है, दृढ़ निश्चय से काम लेना है, दृढ़ता से काम लेना है। पुरुषार्थ चाहिए इसमें, क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए इसमें। आज्ञाकारिता में आया, उत्तीर गया, यानी कि आज्ञा में आया तो संसार को तीर गया। आज्ञाकारिता में आना सुलभ नहीं है, बहुत से प्रतिबंध अड़ते हैं उसमें, अड़े आते हैं। आज्ञा में आने में सभी प्रतिबंध को खत्म करना पड़ता है, तभी आज्ञा में आ सकता है जी। हरेक की योग्यता अलग अलग है, हरेक के प्रारब्ध पूर्व कर्म का उदय वो भी अलग अलग है। सबको उल्लंघन करके आज्ञाकारिता में आना पड़ता है, तभी काम होता है। वो सुलभ नहीं है उतना। जब वो सुलभ नहीं है तो मोक्ष मार्ग भी, परमार्थ मार्ग भी सुलभ नहीं है। चाबी तो मास्टर की है, उसमें भी पूर्वग्रह को छोड़ना, ये संकल्प विकल्प वाला आखिरी है, ये प्रतिबंध आखिरी है। इसके पहले तो समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, शरीर प्रतिबंध, ये सब प्रतिबंध आते ही हैं, लेकिन पूर्वग्रह को छोड़ना इससे भी कठिन हो जाता है।
क्या
हर एक का अलग अलग होता है, वो एक प्रकार का नहीं होता है, ये मिसकॉन्सेप्ट है। हर एक का अलग अलग होता है, किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को कोई। एक सत्संग ऐसा साधन है तो जो पूर्वग्रह को छुड़ाता है, लेकिन सत्संग में आकर के भी पूर्वग्रह नहीं छोड़े तो उसको आत्मकल्याण होना बहुत दुष्कर है, बहुत दुर्लभ है। जीव ने अनेक प्रकार की बातें मान रखी है और उल्टा निश्चय कर रखा है, बहुत सी बातों का, एक दो नहीं है, बहुत से हैं। अरे हम मनुष्य है वो भी एक पूर्वग्रह है, जिस पर्याय को, कर्मजनित पर्याय को प्राप्त हुआ, मान लिया अपना स्वरूप। हम मनुष्य है वो भी पूर्वग्रह है, हम पुरुष है, हम स्त्री है, ये सब पूर्वग्रह है। हम आत्मा है और कुछ नहीं है। ज्ञानी क्या समझाते हैं कि तुम आत्मा हो, जगत में परिभ्रमण करने वाले अनंत आत्माएं हैं, इसमें तुम भी एक हो, पर अकेला परिभ्रमण कर रहा हो, जन्मा भी अकेला, मरेगा भी अकेला, और कोई बाधा पीड़ा होगी, रोग होगा तो दुख भी अकेला होगेगा, टेंशन आएगा तो भी अकेला को, और मोक्ष प्राप्त करेगा तो भी अकेला ही प्राप्त करेगा। ये एकत्व भावना है, बार भावना में एकत्व भावना है, लेकिन मान रखा है मैं ये वाला हूं, ये वाला हूं, ये वाला हूं, जैसा शरीर मिला वैसा हूं, मोटा हूं, दुबला हूं, सुरूप हूं, कुरूप हूं, ऊंचा हूं, न्याचा हूं, सब अनेक प्रकार का, कितना थर का थर जमाया हुआ है। विपरीत मान्यता के थर के थर जमे हुए हैं, जैसे वो जंग जम जाता है ना, जंग होता है कितना, ये वॉट में खुलता नहीं ना कभी कभी, जंग लग जाता है अंदर में, काट लग जाता है, कितना होता है, थोड़े से परमाणु होता है, लेकिन खोलने में पसीना उतर जाता है, नहीं खुलता है कभी, तो वहां रसायन डालना पड़ता है, केमिकल डालना पड़ता है, जब वो पिघलता है तभी निकलता है। ऐसे सभी मान्यता जो विपरीत जमी हुई है, उल्टा निश्चय किया हुआ है, उसको निकालने के लिए सत्संग रसायन चाहिए। क्या चाहिए? सत्संग रसायन चाहिए, जब ही निकलेगा, और वो भी दीर्घकाल पर्यंत, सत्संग की उपासना भक्ति से, सरलता से, वैराग्य से करें तभी सफल होता है। दो वाक्य लिखा है लेकिन सब फैसला कर दिया है कि पहले तो परमार्थ की परमार्थ मार्ग की प्राप्ति दुर्लभ क्यों है कि आज्ञा में एक तान जीव हुआ नहीं, और ऐसा होना भी दुर्लभ है, वो भी सुलभ नहीं है। वाक्य तो एक ही लिखा है लेकिन कीमत कितनी चुकानी पड़ती है कि सब प्रतिबंध को छोड़ना पड़ता है तभी आज्ञा में एकतान होता है, और जो आज्ञा में एकतान होता है उसका आत्मकल्याण हो जाता है, वो समझाने की जरूरत नहीं है। जिसको प्रतिबंध नहीं, जिसको स्वच्छंद नहीं, उसको परिभ्रमण का कौन सा कारण है? और भी जगह लिखा है कि ज्ञानी की आज्ञा भव में जाने के लिए आड़ा प्रतिबंध समान है, वो तो भव में जाने नहीं देगी, वो भ्रमण करने नहीं देगी। पूछा है सिंह जी भाई को कि इसके लिए आप कौन सा उपाय करोगे? आज्ञा में एकतान होने के लिए आप क्या उपाय करोगे, अथवा आपने कौन सा उपाय करने का निर्धार किया है कि मैं यही उपाय करूंगा, कोई निश्चय किया है क्या? अधिक क्या लिखे, उतना आ जाए आप में तो ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। कृपालु देव ने ऐसी ऐसी बातें लिख करके बहुत कृपा की है। देखो इतना सा हो जाए, उनको सब सुझ आ जाएगी। आज्ञा में एकतान हो गया आत्मकल्याण के लिए, इनके परिणाम इधर उधर जाएंगे नहीं, सीधे रास्ते पे चल जाएगा। जो आज्ञा में एकतान होता है उसको अमलीकरण शीघ्र ही होता है। जो भी अपने लायक आज्ञा समझ में आती है फौरन वो अपना उसका अमलीकरण करेगा, देर लगाएगा नहीं, हो जाएगा। ये 147 हुआ, 419 पेज 358 संसार में सुख क्या है कि जिसके प्रतिबंध में जीव रहने की इच्छा करता है? प्रश्न ही पूछा है पत्र में, और कोई बात नहीं लिखी है, एक ही वाक्य लिखा है सारा पत्र का, एक वाक्य में लिख करके पत्र छोड़ दिया है, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। इसका आशय वो है कि अपने को पूछे, जीव स्वयं को पूछ ले कि संसार में सुख क्या है कि जिसके प्रतिबंध में जीव रहने की इच्छा करता है, तो मुझे यहां रहना है, ऐसी कौन सी बात है, अपने आप को पूछ लो। या भीतर में तलाश कर लो तो क्या सुख है। सुख के लिए देवलोक के देव और सभी मनुष्य प्रयत्नवान क्यों है? ये सुख मिल नहीं रहा है इसलिए तो प्रयत्नवान है। और जितना अधिक सुख के लिए प्रयास करता है संसार के सुख के लिए उतना अधिक दुखी होता है, क्योंकि तो परिणाम में आकुलता बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, अशांति बढ़ती जाती है। इसलिए पूछते हैं कि क्या सुख है। जीव ने संसार में सुख के लिए सिर्फ कल्पना की है और कल्पना के आधार पे वो जितना भी प्रयास करता है सब उसको दुखदायक बन जाता है, सुख का कारण कोई नहीं बनता, क्योंकि वास्तविकता का वहां अभाव है। जो पदार्थ में सुख नहीं है वो सुख देगा कहां से, और जहां सुख नहीं है वहां से सुख मिलेगा कैसे, ये तो अशक्य है। अनंत काल से अनंत जीवों ने जड़ पदार्थ में से सुख प्राप्त करने का अनंत प्रयास किया है। कितना किया है? अनंत प्रयास किया है, फिर भी एक भी जीव एक समय के लिए एक प्रयास में भी सफल नहीं हुआ है, सभी निष्फल ही निष्फल रहे हैं। इसलिए इस जगत में सुख प्राप्ति की एक बड़ी समस्या रही। मानव जात ने इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को सॉल्व नहीं किया, समाधान नहीं मिला है सारी मानव जात को। बुद्धि वाले तो बहुत हैं उसमें, ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों में बुद्धि नहीं है।
प्रयास में निष्फल रहे फिर भी वो चिपक के रहता
है, तो उनको एक आशा और अपेक्षा रहती है मिल जाएगा मिल जाएगा, कभी न कभी मिल जाएगा। बस जैसे हिरन दौड़ता है दांजवाना जल ने पीछे, क्या बोलते हैं उनको दांजवा का जल को,
मृग मारी चीका।
हाँ मृग मारी चीका, वो उनको पानी दिखता है तो दौड़ता है, पानी है नहीं लेकिन दिखता है, ऐसे सुख है नहीं लेकिन सुख दिखता है उनको, भ्रांतिगत रूप से सुख दिखता है तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, क्या करेगा, यही हालत है। और निश्चय कर लिया है कि सुख यहां है, ये सुख का कारण है, ऐसा निश्चय कर लिया है तो निश्चय के कारण से दौड़ लगी है।
अनंत काल से क्रांतिगत बढ़ रहा है, अनंत काल से प्रयास कर रहा है तो कुछ आता
भी
नहीं, फिर भी
वो
रहता है।
कोई जीव को ये विचार आता है कि कोई दूसरा उपाय होगा, सुख का उपाय कोई दूसरा होगा, तो उसके लिए वो खोज करता है और जो खोज करता है उसको मिलता है। खोज में आना चाहिए कि अभी तक सुख मिला नहीं तो वास्तव में कोई दूसरा उपाय होगा, कौन सा है, इसके लिए उसकी जिज्ञासा पहले होती है और कि जिज्ञासा के बाद खोज चालू होती है तो उनको मिलता है। क्योंकि जगत में ये बात भी अप्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है कि धार्मिक क्षेत्र में सुख शांति मिलने का संभव है और क्षेत्र में नहीं है, तो उस क्षेत्र में लोग जाते हैं, उसमें भी सही जिज्ञासा होती है उनको मिलता है, ऊपर ऊपर वाले को नहीं मिलते, ऊपर ऊपर वाले को नहीं मिलता। तो ये बनता है। इस वचन में तो थोड़ा प्रैक्टिकल साइड से अवलोकन करने का संकेत है कि जिसके प्रतिबंध में जीव रहने की इच्छा करता है तो जहां जहां जीव को सुख लगता है, सुख का अनुभव होता है, वहां उनको ध्यान से, बारीकाई से, सूक्ष्मता से अवलोकन करना चाहिए कि वास्तव में सुख मिलता है या मेरी कल्पना है, उतना अवलोकन करना चाहिए तो पता चल जाएगा कि मेरी कल्पना है, सुख भुख है नहीं। जैसे एक तो मान रखा है कि सुख का ये कारण है, सुख का ये साधन है, ये पदार्थ से सुख होगा, ये मान रखा है, और फिर उदय आता है तो रस आता है, वो एक तक जीव कहां फंसता है, तीव्र कषाय में से मंद कषाय में आता है तो फंसता है। तो ज्ञानियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो मंद कषाय है वहां फंसना नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा फंसने की जगह मंद कषाय है और जीव को वहां फंसना नहीं चाहिए। इसलिए अगर अवलोकन करें तो पता चल जाता है कि वास्तव में सुख कहीं संसार में है ही नहीं, और अनुभव की युक्ति से तो पता चल ही जाता है। जैसे कोई अच्छी चीज भाती है किसी को खाने में, पर वो चीज जो खाता है तो शुरू में तो उनको लगता है कि नहीं ठीक, अच्छा लगता है, सुख मिलता है, बाद में वो सुख चालू क्यों नहीं रहता है, बढ़ता क्यों नहीं है, या नाश क्यों हो जाता है, खाया और खाया और खाया और खाया, क्या हुआ, बात समाप्त हो गई। उस वक्त तो उसकी कल्पना भी नहीं रहती, तो वास्तविकता में जीव को आना ही पड़ता है, तो इसकी गहराई में जाता है, इसकी तलाश में जाता है तो पता चल जाता है, नहीं जाता है तो वैसे ही दौड़ता है बार बार। तो जीव संसार के सुख के प्रतिबंध में रहने की इच्छा करता है, इसका कारण उसको सुख का अनुभव होता है, वो है, वो सुख का अनुभव भ्रांतिगत है या वास्तविक है उतना देखना है। ज्ञानी कहेंगे कि ये भ्रांतिगत है, लेकिन ज्ञानी कहे इसलिए मानना है या अनुभव करके मानना है, बस देखो, अनुभव करके मानोगे तो सही माना है, वरना तो सही मान्यता होगी नहीं, तो ऊपर ऊपर से मानने से तो वो टिकने वाला है नहीं, उसमें टिकेगा कहां।
वास्तविक सुख और भ्रांतिगत सुख का डिस्टिंक्शन है, वास्तविक सुख और भ्रांतिगत सुख इसका दोनों में जो तफावत है वो कैसे समझ
में आता है। पहले तो विचार ज्ञान में वो बात समझने की होती है कि जब आकुलता है वो दुख है, और दुख का अभाव का नाम सुख है, दुख का कम होने का नाम सुख नहीं है, तो भूल वहां होती है कि आकुलता बढ़ती है दुख लगता है, और आकुलता कम होती है सुख लगता है, ये भूल होती है। आकुलता का सर्वथा अभाव होवे तो सुख होता है, निराकुलता सुख का स्वरूप है और आकुलता दुख का स्वरूप है। वो बात सत्संग में समझ में, सत्संग में वो बात समझ में आती है तो उसके लिए अपने अनुभव का प्रयोग करना जरूरी होता है, क्योंकि सुख और दुख ये अनुभव का विषय है। किसका विषय है? ये अनुभव करने का विषय है, ये विचार करने का विषय नहीं है। सुख और दुख तो अनुभव के आइटम है, विचार के नहीं। तो अपने अनुभव से देखें तो जो आकुलता रूप दुख है वो तो विद्यमान है सबको, जब वो कम होता है तो उसका अभाव भी हो सकता है, पर जब उसका अभाव हो सकता है तो किस प्रयोग से हो सकता है, वो प्रयोग को समझ करके उस प्रयोग को बराबर प्रयोग करें तो मिटेगा। और इसके लिए ज्ञानियों ने सब बात खुली कर दी है। तुम देखो तुम्हारे परिणाम में जितना राग द्वेष मोह आदि विभाव परिणाम है उतना ही दुख है, उसमें भी जो तीव्र है उसमें दुख, तीव्र है मंद है तो उसमें दुख मंद है, पर उसके अभाव में दुख नहीं है। तो उसका अभाव कहाँ है? कि जो ज्ञान है उसमें राग का अभाव है, ज्ञान में राग का अभाव है। अब देखो परिणमन में राग और ज्ञान एक साथ होता है, एक ही काल में होता है, बाजू बाजू में ही होता है। राग के बगल में ज्ञान है, ज्ञान के बगल में राग है, कोई दूर तो नहीं है। जब दोनों पास है तो दोनों का अनुभव को कंपेरेटिव दृष्टिकोण से देखो कि क्या अनुभव हो रहा है। बात थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है यहां पर, लेकिन जब सुख की तलाश करनी है, सुख को ढूंढना है और सुख को प्राप्त करना ही है तो थोड़ी गहराई में तो जाना होगा ही। दो चीज बाजू बाजू में हो तो उसकी बराबरी करने में, सरखामणी करने में, कंपैरिजन करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे दो सफेद कपड़ा होता है, कौन सा ज्यादा सफेद है बाजू में रखो तो पता चल जाएगा। तो ज्ञान और राग तो बाजू में है ही, और दोनों अनुभव में आ रहा है, अंदर की बात है। अब देखो बराबरी देखो, आकुलता कहाँ है, कहाँ आकुलता नहीं है, उतना ही देखना है। लेकिन वो दुख देखना कब होगा कि जब प्रायोरिटी चेंज होगी तब होगा, इसके पहले नहीं होगा। ये बात तो समझ में तो आसान है लेकिन करने में उतने आसान नहीं है। करने में शर्त होती है कि पहले ये निर्धार करो कि हमें संसार से छूटना है, हमें मुक्त होना ही है, हमारा आत्मकल्याण ही हमें मुख्य है। वो आत्मकल्याण को नुकसान करने वाली कोई भी बात हमें मुख्य करनी नहीं चाहिए। और मूल्यांकन करने में तो सीधी सादी बात है कि एक कटोरे में अमृत है, पी जाओ अजर अमर हो जाओगे, कभी मरोगे नहीं। और कटोरे में जहर है, पियोगे तो मरोगे। अब हम इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी क्या कहे हमारी बुद्धिमानी को, जहर और अमृत के बीच में भी हम चेंज ऑफ प्रायोरिटी नहीं ला सकते, पर फिर कहते हैं कि हमको परमार्थ मार्ग मिलता नहीं है तो कहां से मिलेगा। सीधी सादी बात है, ये तो अमृत है, अगर मिल गया तो हमेश के लिए जन्म मरण खत्म और नहीं पिया तो ये चक्कर चालू है। जन्मते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं, क्या होता है? इसलिए इस मार्ग में आने वाले को सर्वोत्कृष्ट विचारवान जीव बोला जाता है। मुमुक्षु को तो विचारवान जीव बोला है कृपालु देव ने, मुमुक्षु जीव यानी विचारवान जीव। क्यों? कि उसने ऐसा विचार किया कि हमको नहीं मरना है, वरना संसार में सभी बुद्धिमान लोग भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मरना तो पड़ेगा, उसमें कोई उपाय नहीं है, तो उसका उपाय करने का दरवाजा ही बंद कर देते हैं, विचार ही छोड़ देते हैं। इसमें क्या है, सब मरते हैं, हमको भी मरना पड़ेगा, नहीं चाहे तो भी मरना पड़ेगा, चाहता नहीं है लेकिन क्या करें, ईश्वर ना घर आगर कोई ना उपाय नहीं, शू लखे पाछल है मेलो रखे थे ने, ऐसा नहीं है, इसका भी उपाय है। और ढूंढा वही बुद्धिमान है, वही विचारवान है, तो इसका उपाय ज्ञानी पुरुषों ने बताया है, समझाया है, करना नहीं करना के लिए हम स्वतंत्र हैं, करने के लिए भी स्वतंत्र और नहीं करने के लिए भी स्वतंत्र। उसमें कोई बलात्कार होता नहीं है कि क्यों नहीं करते हैं, ठीक समझो तो करो, नहीं ठीक समझो तो नहीं करो। ज्ञानी को तो स्पृहा होती नहीं है, नहीं करो तो नहीं करो। इसलिए ज्ञानी भी देखते हैं कि कितनी गरज किसको है, कितनी गरज किसको है वो देखते हैं। जिसको गरज है उनको उस तत्व प्राप्त होने की योग्यता है, पात्रता है, वही अधिकारी है। जितनी गरज ज्यादा उतने। भगवान जिनेन्द्र के समोर शरण में तो इंद्र भी पिल्लू की तरह बैठकर सुनता है, गलुड़ी हो आपने कैसे ना, क्यों? उसका पुण्य कोई कम नहीं है, 35 लाख विमान का अधिपति बोला जाता है, और एक एक विमान में असंख्य देव की आबादी है, हिंदुस्तान का तो 70 करोड़ होगा और 6 अरब में दुनिया अपनी पूरी होती है, 6 अरब के भीतर भीतर। यहां तो एक विमान में अरबों के अरबों का अरबों असंख्य असंख्य देव होते हैं, ऐसे 32 लाख विमान का वो अधिपति बोला जाता है, लेकिन समोसरण में जाता है भगवान के वाणी सुनने को। ज्ञानी है फिर भी उतना विनम्र होकर के सुनता है, इसका मतलब क्या? कि उनको आत्मकल्याण की बहुत गरज है, और एकालतारी होता है, एक भाव में मनुष्य होकर के निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। चीज भी ऐसी है, अनंत जन्म मरण को नाश कराने वाला उपाय है, उसका मूल्य कितना और किस पदार्थ से इसका मूल्य किया जा सकता है, ये किया ही नहीं जा सकता। जगत में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि इससे इसका मूल्य किया जाए। तो उतनी बात जिसको समझ में आती है वो गरजमान होकर के उस तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसको प्राप्त होता भी है, नहीं होता है सो बात नहीं है। यहां अपने अनुभव को देखना है कि किसके प्रतिबंध में रह करके मैं अनंत संसार में भटकना चाहता हूं, उतना देखना है। किसके प्रतिबंध में रह करके मैं इस संसार में भटकना चाहता हूं, ऐसी कौन सी चीज है? क्षणिक ठीकपना लगे और इसके पीछे पूरा परमार्थ मार्ग को, जन्म मरण मिटाने का मार्ग को छोड़ दे, वो बात कहां की बुद्धिमानी की है। पर ऐसा जीव अभिचारीपना यानी बेवकूफी करता भी है। जैसे किसी को व्यसन होता है तो क्या होता है, उसको मालूम है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। किसने तंबाकू छोड़ी और कितनी भी महंगी हुई ये सिगरेट वगैरह बात उनको तो मालूम नहीं है, लेकिन चीज तो महंगी होगी। भाव तो हर एक चीज का दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है, तो इसका भी बढ़ता ही होगा ना। और लिखते हैं चेतावनी लिखते हैं क्वेश्चन, फिर भी क्यों खाता है क्यों पीता है, बस यही हालत है संसार में। जैसे उनको मालूम है कि नुकसान कारक है फिर भी लेता है, वैसे ही जीव प्रकृति वशात ऐसा ही करता है। क्षणिक सुख लगता है नहीं है नहीं, फिर भी क्षणिक लगता है तो इसके पीछे दौड़ लगाता है। अब एक बात समझने लायक है इसमें कि देखो जीव का स्वभाव, थोड़ा भी सुख लगे तो इसके पीछे पूरी जिंदगी पीछे लग जाएगा, और पूरा सुख दिखे तो क्या करेगा, सच्चा सुख और ये तो झूठा सुख और अल्पकालीन, भ्रामक और अल्पकालीन है, फिर भी इसके पीछे अनंत काल से लग गया है, छोड़ता नहीं है। तो सच्चा दिखे और सर्वकाल के लिए मिले ऐसा दिखे तो वो जीव कितना पुरुषार्थ करेगा और कितना कर सकता है, बस अंदाजा लगा लो। जिन जिन महात्माओं ने आत्म कल्याण किया है उन्होंने वो बात को देखी है कि अरे ये तो सच्चा सुख है और हमेशा के लिए है, इसको मुख्य करने में मुझे दुनिया के किसी भी प्रसंग और किसी भी पदार्थ की मुख्यता करने का कोई कारण रहता नहीं है, बस उसका प्रतिबंध गया हो जाएगा सुख। वास्तविकता से बात समझ में आनी चाहिए, कल्पना में रह करके नहीं, वास्तविकता से समझ में आए बात सबको। तो कोई भी परिस्थिति बाहर में हो उसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पहले ये कर लेना, बाहर के कोई परिस्थिति न सुखदायक है न दुखदायक है, फिर इसकी चिंता क्यों? पर इसमें डरने की बात भी क्या है, तो कोई बात नहीं है। फिर बिना प्रतिबंध कोई पुरुषार्थ करेगा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ये भी एक इस सन्मार्ग की सुविधा है कि बहुत अल्पकाल में बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है, ज्यादा काल लगता नहीं इसमें, काम करता है उसको ज्यादा काम ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत अल्पकाल में प्रोग्रेस होता है। ईमानदारी से, गंभीरता से काम करने का शुरू कर देना चाहिए, बस उतनी सी बात है। ऐसे छोटे छोटे पत्र में कृपालु देव ने एक दो वचन भी लिखे हैं, अगर जीव को अंदर में चौंटे तो बेड़ा पार हो जाए, एक भी वचन चौंट जाए ना तो उसका तो निवेड़ा हो जाए, बात ऐसे ऐसी लिखी है। यहां तक रखें।